आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, आयुष्मान योजना में उम्र सीमा तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार, 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल करने की मांग खारिज। डाल्टनगंज से मुंबई के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन को मिली मंजूरी, सांसद वीडी राम 7 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। पलामू और हजारीबाग में पुलिस ने दो चर्चित हत्याकांड का किया खुलासा, मुख्य शूटर सहित 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने दी चेतावनी। और रांची में सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के चौथे दिन हिमाचल और तमिलनाडु ने दर्ज की बड़ी जीत, 9 अप्रैल से शुरू होंगे नॉकआउट मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए आयु सीमा तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना में शामिल करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देना सरकार की नीति है और इसमें किसी प्रकार के भेदभाव का आधार नहीं दिखता। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को आंकड़ों के साथ सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी है। सांसद विष्णुदयाल राम के प्रयासों से डाल्टनगंज और गढ़वा रोड होकर मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा को स्थायी मंजूरी मिल गई है। आगामी 7 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे डाल्टनगंज स्टेशन पर सांसद इस साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई सुविधा से क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के आर्यभट्ट सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 562 रियासतों के विलय में पटेल के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के गौरव और अखंडता का प्रतीक बताया।
दुनिया में बिस्मार्क का लिया जाता है, सरदार पटेल जी का व्यवहार, आचरण और काम करने की क्षमता उससे कहीं ज्यादा थी और वास्तव में इस देश को एकजुट रखने की जो काम उन्होंने किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरी कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक ने आज पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा न्यायालय का दौरा किया। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ हुए भव्य स्वागत के बाद उन्होंने नवनिर्मित बार भवन और न्यायिक सुविधाओं का जायजा लिया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने वरिष्ठों के सम्मान और कनिष्ठों के सही मार्गदर्शन पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने न्यायिक व्यवस्थाओं और आधारभूत संरचनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और न्यायिक पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं से संवाद भी किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सोनाहातू की सत्यवती देवी को बड़ी राहत मिली है। उनके गंभीर इलाज के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। संजय सेठ ने इस मानवीय मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मरीज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 4,345 पंचायतों के लिए 2,254 करोड़ रुपए के आवंटन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मिली है राशि राज्य गठन के बाद की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक सहायता है। इस ऐतिहासिक सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद में 6 अप्रैल से 2 दिवसीय प्रतिष्ठित कार्यक्रम इन्वेंटिव 2026 का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोपहर 12:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। संस्थान के निदेशक सुकुमार मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में देश के 15 आईआईटी संस्थान और कई स्टार्टअप्स अपने शोध प्रदर्शित करेंगे। सफल नवाचारों को फ्रांस में अपना प्रोजेक्ट दिखाने का अवसर मिलेगा।
डिफरेंट डिफरेंट थीम एरिया में, टोटल 5 थीम एरिया में रिसर्च आके 6 तारीख से उसका स्टार्ट होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके साथ कुछ स्टार्टअप भी उसमें आए हुए हैं। और ये जो इन्वेंटिव हो रहा है जिसमें कि हम इनोवेशन को शोकेस कर, टोटल अभी तक 15 आईआईटी का डायरेक्टर कंफर्म।
धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 10 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि किताबें समाज को दिशा देने और नई सोच पैदा करने का सशक्त माध्यम है।
धनबाद के धरती पर पुस्तक का मेला यानी बुक फेयर का आयोजन यहाँ के कमेटियों के द्वारा किया गया है। सांस्कृतिक विकास का ये बहुत बड़ा पहलू है। सिर्फ किताब का ही मेला नहीं है बल्कि इसके साथ साथ संस्कृति और विचारों का भी आदान प्रदान होने का एक प्लेटफॉर्म है।
रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने भू राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कांकी अंचल में अवैध निर्माण के मामले में एक राजस्व कर्मचारी को तुरंत निलंबित करने और अनगढ़ा में म्यूटेशन लंबित रखने पर शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को छोटे भूखंडों के म्यूटेशन मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। पलामू के मेदिनीनगर में मोहम्मद समीर हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पांकी में हुई मुठभेड़ के बाद मुख्य शूटर फैज खान को पैर में गोली लगने के बाद दबोच लिया गया, जबकि उसके 2 अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में सामने आया कि जमीन विवाद के कारण 2 लाख रुपए की सुपारी देकर यह हत्या कराई गई थी। पुलिस ने साजिश रचने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। हजारीबाग पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान झंडा चौक पर हुई अभिषेक कुमार की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि नशे की हालत में मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने तलवार और चाकू से हमला किया था। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए हैं।
जो रामनवमी का जुलूस था उसके दौरान ये घटना हुई थी। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया है और घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो धारदार हथियार वगैरह का इसके लिए प्रयोग किया गया था, उनको चाकू और तलवार से कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जब्त किया है। उसमें ये पाया गया कि जुलूस के दौरान आपसी कुछ झड़प हुआ और उसमें जुलूस में जो लोग शामिल थे उनके पास धारदार हथियार था, तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के पावन अवसर पर देश विदेश में रहने वाले ईसाई समुदाय और सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने का यह दिन हमें सत्य, प्रेम और करुणा की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से आपसी सद्भाव, शांति और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने का संकल्प लेने की अपील की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। रांची के मरांगगोम के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जारी 16वीं सब जूनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के 4th दिन आज कड़े मुकाबले देखने को मिले। पुल बी के एक बेहद रोमांचक मैच में उत्तराखंड और चंडीगढ़ की टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। वहीं एक अन्य मुकाबले में हिमाचल ने कर्नाटक को 3-1 से हराकर महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। पुल ए में तमिलनाडु ने असम पर 5-1 से बड़ी जीत दर्ज की। टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले 9 अप्रैल से शुरू होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, आयुष्मान योजना में उम्र सीमा तय करना सरकार का नीतिगत अधिकार, 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल करने की मांग खारिज। डाल्टनगंज से मुंबई के लिए सीधी साप्ताहिक ट्रेन को मिली मंजूरी, सांसद वीडी राम 7 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। पलामू और हजारीबाग में पुलिस ने 2 चर्चित हत्याकांड का किया खुलासा, मुख्य शूटर सहित 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य में 9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने दी चेतावनी। और रांची में सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के चौथे दिन हिमाचल और तमिलनाडु ने दर्ज की बड़ी जीत। 9 अप्रैल से शुरू होंगे नॉकआउट मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।